एक्सॉन अक्षतंतु पतले लंबे तंतु होते हैं जो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत आवेगों के रूप में सूचना संचारित करके तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को सक्षम बनाते हैं। एक्सॉन अक्षतंतु कोशिका के केंद्र में सोमा और एक्सॉन टर्मिनलों के बीच स्थित होते हैं। अक्षतंतु तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जाता है। एक्सॉन अक्षतंतु के प्रकार माइलिनेटेड अक्षतंतु अक्षतंतु जो एक फैटी इंसुलेटेड कोटिंग से ढके होते हैं जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिनेटेड अक्षतंतु दैहिक तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स को शरीर में कंकाल की मांसपेशियों से जोड़ते हैं। यह मांसपेशियों के ऊतकों की स्वैच्छिक गति को निर्देशित करता है। अनमाइलिनेटेड अक्षतंतु वे अक्षतंतु जो माइलिन आवरण से ढके नहीं होते हैं। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स को चिकनी मांसपेशियों से जोड़ते हैं। ये हृदय रक्त वाहिकाओं आदि जैसी चिकनी मांसपेशियों के अनैच्छिक गति को निर्देशित करते हैं। अक्षतंतु की संरचना न्यूरॉन के प्रकार के आधार पर अक्षतंतु की लंबाई बहुत भिन्न हो सकती है। कई अक्षतंतु केवल 1 मिलीमीटर के होते हैं लेकिन कुछ बहुत लंबे होते हैं। सबसे लंबे अक्षतंतु मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं और 1 मीटर से अधिक तक फैल सकते हैं। एक न्यूरॉन में अधिकतर एक अक्षतंतु होता है और यह अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियों या ग्रंथि कोशिकाओं के साथ जुड़ जाता है। अक्षतंतु न्यूरॉन की कुल मात्रा का 95% से अधिक हो सकता है। अक्षतंतु का व्यास जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी से ये तंत्रिका आवेगों को संचारित कर सकता है। माइलिनेटेड अक्षतंतु परिधीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनमाइलिनेटेड अक्षतंतु उपस्थित होते हैं। अक्षतंतु संपार्श्विक एक अक्षतंतु पार्श्व शाखाएं विकसित कर सकता है जिन्हें अक्षतंतु संपार्श्विक कहा जाता है। अक्षतंतु संपार्श्विक छोटे विस्तारों में विभाजित हो जाते हैं जिन्हें टर्मिनल शाखाएं कहा जाता है। ये संपार्श्विक न्यूरोनल गतिविधि के लिए एक प्रतिक्रिया प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्षतंतु संपार्श्विक का अंतिम भाग उत्तरोत्तर पतला होता जाता है, इसे टेलोडेंड्रोन कहा जाता है और यह सिनेप्स में समाप्त होता है। सिनेप्स अक्षतंतु के सिरे पर एक सिनेप्टिक टर्मिनल होता है जो अन्य कोशिकाओं के साथ सिनेप्स बनाते हैं। ये सिनेप्स विद्युत आवेग को अन्य न्यूरॉन्स या लक्ष्य कोशिकाओं तक रासायनिक संकेत के रूप में संचार करने में मदद करते हैं। सिनेप्स न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना प्रसारित करने में मदद करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का एक्सॉन टर्मिनल कंकाल की मांसपेशी कोशिका पर मोटर एंटलेट के साथ एक सिनेप्स बनाता है, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। माइलिन आवरण कुछ अक्षतंतु माइलिन से घिरे होते हैं जो मस्तिष्क के सफेद पदार्थ का निर्माण करता है। माइलिन एक वसायुक्त पदार्थ है जो एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है जो अक्षतंतु को लंबी दूरी तक संदेश भेजने में मदद करता है। तंत्रिकाश रैनविया के नोड तंत्रिकाश कुछ न्यूरॉन्स के अक्षतंतु पर इंसुलेटिंग माइलिन शीथ में आवधिक अंतराल है जो तंत्रिका आवेगों के तेजी से संचालन को सुविधाजनक बनाने का कार्य करते हैं। रणवीर के नोड अक्षतंतु पर उपस्थित होते हैं जो इंसुलेटिंग माइलिन शीथ में संकीर्ण क्षेत्रों के रूप में उपस्थित आवधिक अंतराल होते हैं। रणवीर के नोड्स पर कोशिका झिल्ली उजागर होती है अर्थात गैर माइलिनेटेड होती है। अक्षतंतु का कार्य विभिन्न न्यूरॉन्स मांसपेशियों और ग्रंथियों तक सूचना पहुंचाना है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक अक्षतंतु होता है जो इसे सीधे दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है। संकेतों के संचालन की दिशा के आधार पर तंत्रिकाओं को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अभिवाही तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं जो संवेदी न्यूरॉन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संकेत पहुंचाती हैं। अपवाही तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं जो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संकेतों को उनकी लक्षित मांसपेशियों तक ले जाती हैं। मिश्रित तंत्रिकाएं, वे तंत्रिकाएं जिनमें अभिवाही और अपवाही दोनों अक्षतंतु होते हैं। यह आने वाली संवेदी जानकारी और बाहर जाने वाली मांसपेशी संकेत दोनों का संचालन करता है। अक्षतंतु की टर्मिनल शाखाएं विद्युत आवेगों को न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में रासायनिक संदेशों में बदलती हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटरों को अन्य न्यूरॉन्स को संदेश भेजने के लिए सिनेप्स में छोड़ा जाता है। अक्षतंतु का यह माइलिन आवरण विद्युत आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं के साथ जल्दी और कुशलता से संचारित करने की अनुमति देता है। तंत्रिका आवेग के संचरण की प्रक्रिया तंत्रिका आवेग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका झिल्ली में आयनिक गति के माध्यम से प्रकट होती है। आवेग कोशिका की विश्राम झिल्ली क्षमता में सकारात्मक पक्ष की ओर परिवर्तन है जिसे क्रिया क्षमता भी कहा जाता है। एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के प्लाज्मा झिल्ली में विद्युत आवेश में अंतर के कारण होता है। जब एक न्यूरॉन सक्रिय रूप से तंत्रिका आवेग को संचारित नहीं कर रहा है तो इसे विश्राम अवस्था में कहा जाता है, लेकिन तंत्रिका आवेग को प्रसारित करने के लिए तैयार है। जब कोई तंत्रिका विश्राम की स्थिति में होती है तो सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली में विद्युत आवेश में अंतर बनाए रखता है। जब तंत्रिका विश्राम की अवस्था में होती है तो अक्षतंतु में प्लाज्मा में प्रोटीन और पोटेशियम आयनों की उच्च सांद्रता होती है, जबकि सोडियम आयनों की सांद्रता कम होती है। लेकिन अक्षतंतु की परिधि में उपस्थित द्रव में पोटेशियम आयनों की सांद्रता कम और सोडियम आयनों की उच्च सांद्रता होती है। इस अंतर के कारण एक सांद्रता प्रवणता स्थापित होती है। बाहरी उत्तेजना जब झिल्ली तक पहुंचती है तो इसकी पारगम्यता में परिवर्तन होता है और सोडियम आयन अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता सकारात्मक पक्ष की ओर बढ़ जाती है। इस घटना को विध्रुवण कहा जाता है। उत्तेजना स्थल पर विद्युत विभव अंतर को क्रिया विभव कहा जाता है। परिणामस्वरूप विद्युत आवेग तंत्रिका तंतु के विध्रुवित भाग से एक्सोप्लाज्म में तंत्रिका तंतु के ध्रुवीकृत भाग में प्रवाहित होता है, लेकिन कोशिका की सतह पर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके परिणामस्वरूप तंत्रिका तंतु में आगे एक नई क्रिया क्षमता उत्पन्न होती है। इससे सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करने लगेगा और झिल्ली फिर से विश्राम की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए पुनर्ध्रुवीकरण मूल झिल्ली क्षमता स्थिति को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। अभ्यास प्रश्न: रेविया का नोड कहाँ स्थित होता है? मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन टर्मिनल का क्या कार्य है? अक्षतंतु की संरचना का वर्णन करें।